जय राधमा भव कुंज बिहारे,
The following is an initiation lecture by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, delivered on 3rd of February 2016 at Phoenix, Mauritius.
Gopi Jana Bala Bha Jivala Dhari भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हाय कृष्णा
इन आवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट आई नो द एक्सेप्ट After one chant at 16 rounds, for a minimum of 1.5 to 2 years, without interruption, and one who follows four regulated principles, no meat for shenanigans, no intoxication, no illicit sex life, and no gambling, make less. Srimad Bhagavatam ke chauthe skandh mein, Narada Muni kehte hain, स्वाभाविक स्वाभाविक व्यक्ति के तीन जन्म होते हैं. पहला जन्म है माता के गर्भ से, जिसे कहते हैं शुक्र जन्म. दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें हरि नाम दीक्षा मिलती है, जिसे कहा जाता है सवितृ जन्म. तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, इसको कहते हैं यज्ञ का जन्म. और हरि नाम दीक्षा जब दी जाती है, जब किसी ने कम से कम 1.5-2 साल के लिए 16 माला का जाप किया हो, चार नियम का पालन करते आ रहा है. Chanting the holy name is beneficial in every situation, whether chanted knowingly or unknowingly. But chanting the holy name is most beneficial when we chant the holy name avoiding the offenses. Bahu janma kare yadi shravana kirtana tai tabudana paye krishna pade premadana. In the Chaitanya Charitamrita it is said, one may go on chanting the holy names of the Lord birth after birth, and unless one avoids the 10 offenses, he won't be able to get the full benefit of chanting Hare Krishna. So there are 10 offenses in chanting the holy name, which we should all avoid. So, Shastra mein kaha gaya hai, Harinam ka uchharan ka laabh to har sthiti mein hai. Agar hum pura laabh uthana chahte hain, hume 10 naam apradhon se bachna chahiye. 10 offenses are, 1, the basking the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy names of the Lord. This is known as Vaishnava Aparad. And as Chaitanya Mahaprabhu said, just like a beautiful garden can be spoiled with a mad elephant coming in, all the gains of devotional service can be spoiled by offending Vaishnavas, especially if we are influenced by jealousy, envy, etc. We should avoid that. We should look at the good qualities in everyone. Pehla naam apradh hai Vaishnava apradh, Vaishnava ki ninda karna. Second is to consider the name of demigod to be equal to or independent of the holy name of the Lord Vishnu. The demigods are not equal to the Lord, they are just subordinate to the Lord, and they derive all their strength from the Lord. So for someone to think the demigods are equal to the Lord, it's an illusion. The third is to disobey the instruction of the spiritual master. The spiritual master, as the representative of the Lord and the Parampara, just gives you the same instruction given by the Lord. And the spiritual master's only desire is to see the disciple make spiritual advancement. So with faith and respect, one should try to follow the instructions of the spiritual master, recognizing that these are for my ultimate good. The next says, you can blaspheme the Vedic literature, or literature in persons, or the Vedic version. The Vedas have given us transcendental knowledge that is timeless and meant entire humanity. So to think that the Vedic message is outdated today is wrong. The Vedic message contains eternal wisdom. So that's Nama Pradha and Isyami Vashna Chaya. Pahla Nama Pradha hai, unki linda karna. Jinnunne jeevan arpan kiya hai, Bhagwan ke seva mein. Dusra Nama Pradha hai, devtao ko Param Bhagwan ke saman samajhna. Unse swatantra samajhna. Jo devta hai, wo Param Bhagwan ke adheen hai. Wo Param Bhagwan ke adesh ke anusar karya karte hain. Tisra Nama Pradha Guru ho gaya, Guru ko sadhana vyakti samajhna ya Gurudev ki siksha ka palan nahi karna. Guru wo hai jo hame wahi sandesh deta hai jo Bhagwan ne diya hai, jo parampara dwara aaya hai. Chautha Nama Pradha hai Vedic shastra ki ninda karna, yehi sochna ki Vedic sahitya ka koi sthan nahi hai. Consider the glories of chanting Hare Krishna's imagination and the gifts of interpretation of the holy names of the Lord. These are the fifth and sixth in answer. Pancha Nama Pradha hai, Hari Naam ki Mahima ki Kalp ki, Hari Naam ki jo Mahima hai, usko samajhna ye kalpana hai. Ye sochna ki Hari Naam itni shakti nahi hai. हमें हरि नाम के अलावा और मंत्रों की आवश्यकता है, ऐसा भाव रखना यह अपराध है. और हरि नाम को अपना भाव देना, हरि नाम के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें सेवा दो सेवा दो सेवा दो, और हम अपना भाव जोड़ दें, वो अपराध है. The seventh offense is to commit sins on the strength of chanting. Prabhupada often said, this is the most serious of all offenses. A devotee thinks, I'm initiated now. I got initiated in front of the deities. I'm chanting the holy name for so many years. So now if I deliberately commit some mistake, Krishna will have to pardon me after I chant. So that should not be our mentality. Our mentality should be, now, no more sinning. Now that I'm getting initiated, no more sinning. Now that you commit sins, the sins of chanting. Sattva Nama Pradha hai, hai naam ke jab ke bal par paap karna. Prabhupada ji kehte the, ye sabse gambhir apradh hai. Ye sochna ki, maine diksha liya hai, मैं अपराध करूंगा तो भगवान माफ कर देंगे, ऐसा भाव रखना महान अपराध है. हमें हरि नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए अब हम पाप के काम से बचें. आठवां नाम अपराध है यह हरि नाम को सोचना कि वो कर्मकांड के समान है. कर्मकांड एक प्रकार का बिजनेस रिलेशनशिप है भगवान के साथ. हम ये करेंगे इसके बदले में हमको ये सुख चाहिए. हम आते हैं शिव भक्ति का निभाने, जिसका अर्थ है चाहे भगवान कुछ भी दे, हम भगवान की सेवा को बंद नहीं करेंगे. जो कर्मकांड में हमारी कोई रुचि नहीं, झेर का झेर रहती है, चाहे आप सदारत प्यार में पियो यहाँ सोने के प्यादे में, तो अपराध करोगे तो परिणाम देना पड़ेगा। It is within the chanting to be like a ritualistic activity offered in the Vedas as Karmakanda. Ninth is to instruct the faithless person about the glories of the holy name. And tenth is to not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachment in spite of chanting. So, chanting the holy name is not karma kanda activity. We don't chant the holy name for material piety. We chant the holy name to get pure love of God. Karma kanda is a sort of business engagement with the Lord. I'll do this, but in exchange I want this benefit. So this chanting is not to be considered as a medium for sense enjoyment. Ninth offense was to preach the message to the faithless. We can preach to everyone. When you go on Harinam, you're preaching to everyone. But the deep meaning of the holy name may be revealed after the person has developed some element of faith in the holy name. So, ये हरे कृष्ण मंत्र है, ये कर्मकांड कार्य नहीं है, और हमें है ना का प्रचार तो हम हर व्यक्ति को कर सकते हैं, पर इसका जो गहरा अर्थ है वो हमें बताना चाहिए तो दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो है ना के प्रति। Not a complete faith in the chanting of the holy name and to material and to maintain material attachment. ये आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए हमें जो कार्य प्रतिकूल है उन्हें त्यागना पड़ेगा। आयनाम के द्वारा आपको असली भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। आयनाम के उच्चारण से आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हो, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें जो प्रतिकूल कार्य हैं वो जानने चाहिए। तो ये विश्वास नहीं रखना कि हरि नाम के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, ये भी एक महान अपराध है। एंड नॉट बी अटेंटिबल चैनिंग व्हेन वी से दैट वी चैंट आवर राउंड्स, वी शुड चैंट आवर राउंड्स वेरी अटेंटिवली। दैट मींस व्हेन वी आर चैंटिंग आवर प्रिस्क्राइब्ड 16 राउंड्स, at least with that time, we should just do one activity, chanting the holy name. Not that I'm chanting the holy name and doing several other errands at the same time. The more intensive your chanting is, the faster will be your spiritual realization. Ye dasva nama prat ka dusra bhag ye bhi hai. ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना। जब आप जाप करने बैठते हो आपको उस समय के लिए केवल जाप में ही ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आप जाप कर रहे हो दस हम और काम कर रहे हो एक साथ। जितने ध्यान से भगवान का जाप करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल दूर होगी। हमें नाम अपराधों से बचना है। मंगल मंदिर में मंगल आरती होती है, गुरु पूजा, तुलसी आरती इत्यादि। तो जो घर में रहते हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए मंगल आरती और इन सब विधियों का पालन। साथ में जो हम खाएं पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए प्रसाद के रूप में, और हमारा ये नियम होना चाहिए खाएंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद और कुछ नहीं, और अगर ये भाव रहेगा तो उन्नति कर सकोगे। साथ में जिन व्यक्ति में पढ़ने की योग्यता है उन्हें प्रभुपाद के ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे भक्त इन ग्रंथों का अध्ययन करें, अध्ययन करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जिनके पास पढ़ने की सुविधा है उन्हें जरूर इन ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। और चार नियम का पालन, मांस अन्न मच्छी नहीं खाना, किसी प्रकार का जुआ नहीं, कोई नशे की चीज नहीं, चाय कॉफी नहीं। और जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में रहे भक्ति की नियमों के अनुसार। अगर हमें नियमों का पालन करोगे, माला का जाप करोगे, तो बिना शंका के भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ सकोगे। As we said earlier, the many candidates accepting initiation in the chanting of the Gayatri Mantra, I think those are taking Brahman, they all understand English, and then I'll speak only in English. All the jo jo Brahman le rahe sab angrezi samajhte hain. So in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, there is an explanation of the qualities of a Brahman. One becomes a Brahman by guna and not janma. Bhakti Siddhanta Ji was the fourth great acharya who publicly spoke that one becomes a Brahman not on the basis of birth but by qualification. The qualifications of a Brahman are very nicely mentioned in the 18th chapter of the Bhagavad Gita. Once Prabhupada was asked by a person, Swamiji, can you do some magic? Because generally people expect, if you've got a spiritual partiality, you'd be an astrologer, a magician, and so on. There are many people who do magic and become God. So Swamiji said, no, I can't do any magic. But one magic I've done. One and tell him to come down to the beach.
Yes.
He said, what magic I've done? So the man was curious, what magic? I have converted thousands of natures into brahmanas. Those who engage in simple activities, he made them into real brahmanas. So Prabhupada wanted genuine brahmanas in his court. Now that I have Brahman thread, now I'm superior to you. Brahman, and what are the qualities of a Brahmana? In text 42 of the 18th chapter, this is explained. Shamodama socham, shanti raja vevacha, jnana vijnana mastikyam, brahma karma subhagajam. A Brahman must be peaceful. Brahman can be peaceful only if we are single pointed in our mission of life, self realization. If our meditation is, I want spiritual life and material life, both side by side, then naturally it will not be peaceful. But if you are single-pointed, and only want spiritual life, then you'll be peaceful. So Brahman should be peaceful, not that he's always agitated, you know, always disturbed. Usually we're always agitated and disturbed because we have material ambitions, and spiritual ambitions. If you have only spiritual desires, then you'll be more peaceful. Then Brahman must have self-control, dhammo. He must have control over his senses and mind. Brahman should not be a slave of the mind and senses. Like yesterday was day before yesterday was a national holiday, and now in your country, Mauritius, that was the day that slavery was abolished in 1835. But I said in my lecture on that day, we may have abolished one type of slavery, but another type of slavery is still there. We still slave our senses. The Brahman must not be slave of the senses. He must have control over the senses. So they would have said, Namo self-control. Austerity. Brahman must be austere. Austerity is the wealth of the Brahmana. Austerity means to use the tongue, mind, intelligence, all in service of the Lord. Brahman should not be very addicted to sense enjoyment. Brahman must believe in austerity. Just like in material life, you turn off your mobile phones. Just like in material life, a person decorates himself with ornaments. So what is a spiritualist ornament? The spiritualist decorates himself with spiritual quality. So a Brahman must have austerity and self-control. Austerity means you voluntarily give up. Yeah, the blue cushion. Austerity means you voluntarily give up what is detrimental for self-realization and itself what is conducive. The Brahman must have self-control. Not that I'm taking Brahman and no control of my senses, I still do the same nonsense. Then there must be purity. As Prabhupada often said, purity is the force. So purity is the force. Purity comes by strictly following rules and regulations. So Brahman must be pure, not that I'm a Brahman in name and I'm impure otherwise. Like there's a famous saying in Hindi, Mume Ram Ram Bhagat Machuri. And the lips we are chanting the holy name, but inside we have a knife. So we should not be sure bottle Brahmins, but we must be real Brahmanas. And therefore, there must be purity. Purity will come by following spiritual standards. Then there must be tolerance. Chaitanya Mahaprabhu highlighted the importance of tolerance. Siddhadabhi sricheda karorabhi saina amanina manadena kitina disarabhi. When you share the holy name of the Lord in a humble state of mind. So in the material world, there will be honor and dishonor. Is that right? There will be victory and defeat, loss and gain, heat and cold, but you have to tolerate it. Not that if I'm insulted, I get disturbed and I retaliate. So tolerance, Chaitanya Mahaprabhu wanted us to be more tolerant than a tree. Tree is extremely tolerant. Come any season, tree is there. In the rainy season, the tree protects you. In the winter season, it gives you wood. In the summer season, it protects you. So we have to become more tolerant than the tree. Honesty. Brahman must be honest. Not that I'm a Brahman and I am not honest. Brahman must be honest. Prabhupada once said, a teacher told his students, go and ask your mother, what is your father's identity? So one boy asked his mother, who is my father? The mother said, son, I do not know who your father is because I had many boyfriends. So any man told this to the teacher, the Prabhupada said, that is honesty. So the point is, Brahman must be honest. Not that I'm a Brahman, I'm always lying, bluffing, cheating. Sometimes you have devotees, they become very friendly with other devotees, borrow their money, take their assets, and then cheat them. Brahman should be thoroughly honest. Honest in terms of following regulated principles. Honest in terms of chanting the holy name. Honest in his dealing with others. Of course, in business one may say, from you I may make no profit. That's not dishonesty. But in our dealings with each other, we should be always. Then we must have knowledge, jnana. Brahman must have transcendental knowledge. Usually in our movement, Brahman initiation is only given after one has passed Bhakti Shastri. I don't think we have that in Mauritius now. Bhakti Shastri. Anyone has it? So Brahman must have transcendental knowledge, which is obtained by reading Prabhupada's books. And we must apply that knowledge and preach that knowledge. Yarida Gutayaka Krishna Pude. Wisdom and religiousness. You must have transcendental knowledge. If you have transcendental knowledge, then you will have wisdom. And then you apply this knowledge. Not that I have knowledge but I don't apply. Like in India they have these Sanskrit colleges. You have students who graduate from there. They become Sanskrit pandits. Many of them know the whole Gita by heart. But if you examine their character, it is so questionable. So it's not that we should only have theoretical knowledge and not apply. You must have knowledge that you apply in your day-to-day life. That is real Brahman. So, aap aise kai bhakt Brahman diksha me le rahe ho. Brahman ke guna hone chahiye. Aur Brahman ke guna ka varnan Bhagavad Gita mein hai. Samo dhamo samo socham shanti rajava me vacha. So, Brahman ke guna ka varnan Gita ke 18th adhyay ke 42nd shlok mein hai. Brahman ka jo man hai shant hona chahiye. ब्राह्मण का मन शांत होगा केवल अगर हमारे मन में एक प्रकार का भाव रहेगा वो है आध्यात्मिक सेवा. अगर हम सदा ये चिंता कर रहे हैं बौद्धिक सुख आध्यात्मिक सुख बौद्धिक सुख आध्यात्मिक सुख आपका मन अशांत रहेगा. ब्राह्मण को मन और इंद्रियों पर वश रखना चाहिए. ये नहीं कि हम इंद्रियों के दास बने. और जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में रख सकता है उसी को ब्राह्मण बनने की योग्यता होनी चाहिए. ब्राह्मण में तपस्या का भाव होना चाहिए. तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षजम. परम भगवान का एक नाम है अधोक्षजा. समझना बड़ा कठिन है. जो तपस्या करे वो भगवान को समझ सकता है. तो ब्राह्मण में तपस्या का भाव होना चाहिए. पवित्रता पवित्र प्रभुपाद जी कहते थे पवित्रता ही शक्ति है. तो पवित्रता होना चाहिए ब्राह्मण में. पवित्रता कैसे प्राप्त होगी? तो भक्ति की विधियों का पालन करो, सुनमाला करो, चाहनियों का पालन करो. ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए. जैसे आप जानते हो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमें पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए. पेड़ कितना सहनशील है. सर्दी में प्रेम पेड़ आपकी सहयोग देता है. गर्मी में बारिश के मौसम में पेड़ हमेशा सेवा देने को तैयार रहता है. ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए. ब्राह्मण को ईमानदार होना चाहिए. ये नहीं हमने ब्राह्मण दीक्षा ले ली हम झूठ बोलते रहे लोगों के साथ. ये नहीं हमने ब्राह्मण दीक्षा ले ली और हम यही सोचते हैं एक दूसरे को कैसे ठगा जाए. नहीं, ब्राह्मण का व्यवहार आचरण बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए. ब्राह्मण के बाद ज्ञान होना चाहिए. ज्ञान जो कि प्राप्त होगा प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा. और ब्राह्मण को इस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए. ये नहीं कि जैसे मैंने कहा था अंग्रेजी में कई भारतीय के महाविद्यालय है वहां के विद्यार्थियों ने पूरा ग्रंथ कंठस्थ किया. उनका आचरण में कई कमी रहती है. तो जो ब्राह्मण है उसका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए. तो मेरी उम्मीद है कि आप सब जो हरिनाम ले रहे हो हरिनाम का ध्यान पूर्वक जाप करोगे और जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हो इन गुणों को अनुकूल करोगे और साधु संघ में ये सब संभव है। साथ में प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो, साथ में मंदिर में सेवा करो, भक्तों के संग में रहो, इस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकोगे। और जो ये चार नियम हैं, इनका पालन भी बहुत आवश्यक है। अगर आप चार नियमों का पालन नहीं करोगे तो भगवान की कृपा जो प्राप्त होती है नियमों के पालन से, वो कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। और साथ में हमें ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। आप में से जितने के पास ग्रंथ पढ़ने की योग्यता है उन्हें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े, प्रसाद संग रहने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सब जो हरिनाम दीक्षा ले रहे हो इत्यादि, कृपा करके इसे गंभीरता के साथ स्वीकार करना। और कई चीजों से हमें बचना चाहिए। उदाहरण के लिए टेलीविजन, आप अगर टेलीविजन के सामने बैठकर हिंदी फिल्में देखोगे, बॉलीवुड फिल्में देखोगे, आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। जो हम देखते हैं हमारी इच्छा होती है उसको हमारे चरित्र में उतारने के लिए, तो जो अनुकूल है वो कार्य करना चाहिए, जो प्रतिकूल है वो हमें त्याग करना चाहिए। साधु संग में रहो और भक्तों के साथ उतना ही कार्य करो जितना आवश्यक हो, उसे अधिक समय भक्तों के साथ लगाओ। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो भक्ति का लाभ उठा सकोगे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और सबका भाव होना चाहिए कि हम मंदिर में सेवा करें। आपके मॉरिशस में कई मंदिर हैं, उन्हें कई क्वीन है तो आप जिस मंदिर के साथ भी जुड़े हो वहाँ में सेवा में जुड़े रहना चाहिए। आप सबने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है? हाँ ना? हाँ, अच्छे भक्त बनोगे, दीक्षा लेके माया में तो नहीं करोगे? कई बार हम सोचते हैं दीक्षा हो जाता सब हो जाए, दीक्षा केवल भक्ति का शुरुआत है, समाप्ति नहीं। Initiation is only the beginning of spiritual life, not the end. So we should at no point think, now I'm initiated, I don't need anything else. No. We have to prove that we are qualified as initiated devotees. We should end properly. So I hope that all of you, those are listening, who is in second initiation, to take your responsibility seriously and stay away from factors that are detrimental. Be convinced and spiritually. Hare Krishna.
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit zkgoswami.com.